Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari Om. Hari Pavitrayadvani Pravishati Vichitra Hridayada Tadakara Chinna Bhavati Nikhilakara Ghatita Smarami Pratastam Nayan Ramaniyam Sukhakaram Akhandanandam Shri Guruvaramaham Brahma Paramam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jai Mudirain Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashyakritau Vande Bhagavantau Punah Punaham Ishvaro Guru Ratmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavat Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaham Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Hari Om Narayana 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 कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में दूसरी वल्ली में प्रसंग ये चल रहा था कि यमराज ने पुनः कहा कि नचिकेता लगता है तुम अभी पूरी तरह से समझे नहीं हो इसलिए अब मैं परम गोपनीय सनातन ब्रह्म को फिर दोबारा कहता हूं भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति को एक ही बात दोहराने में कोई संकोच नहीं होता है क्योंकि वो समझते हैं कि मनुष्य की बुद्धि इतनी छोटी होती है कि वो उतनी धारणा शक्ति उसमें नहीं होती कि एक दफे में ही उसको ग्रहण कर ले अगर समझ में आ गई तो बेड़ा पार है फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होगा और अगर समझ में नहीं आई तो पुनर्जन्म तो होगा ही अब मैं ये भी बताता हूं कि कैसे पुनर्जन्म होता है योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम कहते हैं योने मन्य अन्य माने जो अज्ञानी है अविद्यावंतो मूढ़ा एक तो अज्ञानी है देखो मनुष्य तो पैदा अज्ञानी ही होता है साधारणतया कोई कोई ऐसा निकलता है जो ज्ञानी पैदा होता हो जिनका कोई प्रतिबंध रह जाता है वामदेव आदि की तरह से तो वो पेट से ही ज्ञानवान होकर के निकलते हैं लेकिन बाकी करोड़ों में एक को छोड़ करके बाकी सब अज्ञानी ही पैदा होते हैं तो एक तो अज्ञानी और दूसरे फिर तमोगुणी तमोगुण का लक्षण है कि कुछ समझे नहीं, बुद्धि की जो एक शून्यता की स्थिति होती है वो तमोगुण का लक्षण है। बोले कुछ समझे कि फिर समझाओ, अब समझे कि नहीं अभी समझ में नहीं आई, एक बार दो बार तीन बार कितने भी बार समझा दो, बोले रुकता ही नहीं है, ठहरता ही नहीं है। एक दफे महाराज श्री यहां से निकले प्रवचन करके, तो यहां के लिफ्ट में एक सज्जन साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज आज आपके प्रवचन का सार यही था ना कि सब ब्रह्म है। तो बोले हां, एक घंटे तो हमने गलगुच्चा नहीं किया फिर अगर इतना ही सार है, सार नहीं पकड़ना चाहिए, उस सार को कैसे सिद्ध किया ये भी पकड़ना चाहिए। अगर आप गणित पढ़ेंगे तो गणित का उत्तर थोड़ी रट लेना, ये तो उत्तर है कि सब ब्रह्म है। सब ब्रह्म है कैसे है, मैं ब्रह्म हूं तो कैसे हूं, और मैं ब्रह्म नहीं हूं तो क्या प्रतिबंध है इसमें, ये सब बातें जब तक विचार नहीं करते हैं तब तक उत्तर रटने से काम नहीं चलता है। उत्तर तो कोई भी रट सकता है। तो योनि मन्य अन्य माने अविद्यावंतो और मूढ़ा, मूढ़ा माने जिसकी कुछ समझ में ना आवे, अथवा जो उल्टा समझ ले वो भी मूढ़ ही कहलाता है, भटक रहा है जो। देखो जो मार्क्सवादी और नास्तिक लोग हैं वो भी कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, और एक ब्रह्मज्ञानी है वो भी कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। उत्तर दोनों का सही है लेकिन एक समझ के कहता है एक बेसमझे कहता है। बोले दो बच्चों से कहा, एक ही प्रश्न पूछा, अब एक ने तो अटल टप वैसे ही लिख दिया और एक ने सोच समझ के गणित लगा करके उसका उत्तर लिखा। अब इत्तफाक से जो अटल टप लिखा था उसने भी वही उत्तर लिखा जो समझदार ने लिखा था, तो क्या नंबर तो दोनों को मिल जाएंगे, मगर एक तो गणितज्ञ हो जाएगा और एक जो है मूर्खी बना रहेगा। तो मूर्खता से पुनर्जन्म नहीं कटता है, पुनर्जन्म तो आप सोच समझ करके जब आप ये सोचते हो कि मेरा पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं ब्रह्म हूं इसलिए मेरा पुनर्जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं देह हूं और मैं पुनर्जन्म नहीं मानता इसलिए मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है नारायण। ऐसे तो फिर वेदांत सुनने पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो अविद्यावंता और मूढ़ा ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब मरेंगे तो जैसी उनकी वासना होगी उसी के अनुसार उनका जन्म होगा। अब कुछ कहते हैं कि अंतिम वासना जैसी होगी वैसा जन्म होगा, और हम ये कहते हैं कि जैसी आपने जीवन भर वासना पाली है वैसी ही अंतिम वासना होगी। ऐसा थोड़ी है कि जीवन भर तो आप दुनिया भर की गलत बातें सोचते रहें और अंत में आपके आम ब्रह्मास्मि आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे एक बुजुर्गवार थे तो जब वो शरीर छोड़ने लगे तो अपनी माता श्री ने कहा कि भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, ऐसे बोला राम का नाम लो, पहले तो गर्दन हिलाई, फिर जब कई बार कहा कि राम का नाम लो राम का नाम लो, तो राम बोल के नहीं दिया, क्या बोलते हैं, बोले तो सही मगर बोले क्या, जो तू कह रही है वो मुंह पे ना बोलो जाए। अब सारी जिंदगी जब राम का नाम नहीं बोला है तो अंत समय कैसे राम का नाम आ जाएगा, तो लोग कह तो देते हैं कि अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी गति होती है, लेकिन अंतिम समय में मति होगी क्या? जैसी सारी जिंदगी में मति है ऐसी अंतिम समय में होगी? तो जैसी वासना होती है, माने जीवन भर जैसी वासना पाली है, बस उसी के अनुसार उनकी आगे की गति होती है। बीज जैसा है वैसा ही तो उसमें से पेड़ निकलेगा ना। अच्छा, अब जो आप कर्म कर रहे हैं वो कहां जा रहा है? कर्म करने के बाद बचता है ना कुछ संस्कार, शेष रह जाता है, तो संस्कार कहां डिपॉजिट होता है? खर्च करने के बाद जैसे पैसा बच जाए तो अपने अकाउंट में जाकर जमा कर देते हैं। तो एक ये चित्त जो है ऐसा अकाउंट है कि इसमें चाहे जितना संस्कार डालते रहो सबको ग्रहण करता रहता है। तो चित्त में वो संस्कार जम जाते हैं ना, और अंतिम समय में ये चित्त ही उभर के आता है। उसमें अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार, अब इत्तफाक है कि अच्छे संस्कार उस समय आपको निकलिया में, तो उससे कुछ थोड़ी राहत तो मिल जाएगी, लेकिन पुनर्जन्म भी जरूर होगा। और नारायण, अगर बुरे कर्म किए हैं पहले तो उनका फल भी आपको नरक जरूर मिलेगा। ये स्कॉट फ्री बोले नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है शास्त्र का। नरक स्वर्ग की कल्पना की तो इसलिए थी कि लोग डरें और बुरे कामों से बचें, लेकिन अब बुरे काम तो करते रहे, अब चाहते ये हैं कि उसका फल नरक न मिले। तो नरक माने तो दुख होता है, तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा ना, वो कैसा भी दुख हो। स्वर्ग माने सुख होता है, नरक माने दुख होता है। तो कर्म के यही दो फल होते हैं, सुख और दुख, चाहे वो पुराने किए हुए हों चाहे अब के किए हुए हों। तो ऐसे लोगों की वासना के अनुसार उनको योनि प्राप्त होती है। ये योनि भी उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो मध्यम कोटि के होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुण में मरते हैं वो तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, और जो मध्यम गति में होते हैं वो फिर मनुष्य ही बन जाते हैं। तो उत्तम भी ना हो तो मध्यम तो होनी चाहिए ना। तो ऐसे लोग जो हैं, अब मनुष्य योनि में जाएंगे तो किसी मनुष्य माता पिता के द्वार से जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे तो किसी पशु में माता पिता के द्वार से जाएंगे। बहरहाल गर्भ तो उन्हें उसी योनि का प्राप्त होगा जिस योनि के लायक उनके कर्म है। तो योनि मन्ये प्रपद्यन्ते, तो भाष्यकार ने लिखा योनिम का अर्थ है योनि द्वारम शुक्र बीज समन्विता। खाली योनि की प्राप्ति होती है ये इसका मतलब नहीं है। योनि माने होता है जन्म स्थान, जहां से मनुष्य का जन्म होता है उसको योनि बोलते हैं। तो मनुष्य योनि में मतलब किसी स्त्री के गर्भ से जन्म होगा तो उसकी जननेन्द्रिय को इसीलिए योनि बोलते हैं। और मान लो किसी को गाय बनना है तो गाय की जननेन्द्रिय से जन्म होगा, वहां पर सांड गर्भाधान करेगा। तो माता और पिता का संयोग तो जरूर प्राप्त होगा जैसा भी है। अब देख लो नारायण, समझ लो कहीं ऐसा वैसा हो गया तो फिर ये पशु योनि भी मिल सकती है, पक्षी योनि भी मिल सकती है। मनुष्य योनि तो बहुत अच्छी बात है, मनुष्य के मनुष्य ही बने रहे, और देव योनि तो बहुत ही घट दुर्लभ है। तो योनि मन्ये प्रपद्यन्ते, तो योनि द्वार को प्राप्त होते हैं शरीरत्वाय देहना, शरीर ग्रहण करने के लिए देहना, ये देही जीवात्मा जो है ये शरीर ग्रहण करने के लिए किसी योनि द्वार को प्राप्त होते हैं। और स्थाणुम अन्य अनुसंयन्ति, अब किसी के और भी अधम कर्म है जो बिल्कुल तमोगुण की अत्यंत मतलब घृणित स्थिति में रहता है, पड़ा ही रहता है, कुछ करता नहीं है, ये निकम्मापना जो है ये भी तमोगुण ही कहलाता है। आप हाथ पैर हिलाते ही नहीं हो, कर्म ना करना भी तमोगुण है, उल्टे कर्म करना भी तमोगुण है, और कर्म के बारे में कुछ ना समझना भी तमोगुण है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब जो है तमोगुण के ही लक्षण है, विपर्य, उल्टी बुद्धि। तो अब जिनको पड़े रहने में ही मजा आता है, तो भगवान कहते हैं अब तुम्हें मनुष्य बनाने की जरूरत नहीं है, अब तुम स्थावर बनकर रहो। स्थावर माने एक जगह खड़े रहो। जैसे वो यमलार्जुन की कथा आप सुनते हो भागवत में, तो कुबेर के बेटे थे और मणिग्रीव और नलकूवर नाम था उनका, तो नग्न स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। उधर से नारद जी महाराज आ गए, तो स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन वो जो है नंगे ही खड़े रहे। और बोले अच्छा तुम्हें नंगा रहना अच्छा लगता है, तो जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। वृक्ष कौन कपड़े पहनते हैं? तो जो अपने शरीर को उघाड़ कर रखते हैं बिना बात के नारायण, तो वो वृक्ष योनि की तैयारी कर रहे हैं, तो वृक्ष हो गए। तो ये भी एक योनि है, मतलब इसमें सिर्फ एक कला है, बस उग सकते हैं नीचे से, और जब काल आएगा तो डिके हो जाएगा, उनका समाप्त हो जाएंगे। तो यही काम होता है। लेकिन एक एक पेड़ की आयु कितनी होती है समझो, कोई चढ़ जाए पशु तो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो चार चार सौ वर्ष, आठ आठ सौ वर्ष, हजार हजार वर्ष के पेड़ हैं। तो अगर वृक्ष योनि में चले गए, स्थावर योनि में चले गए, तो समझो इतने दिन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बस खड़े रह करके। एक वो कहावत है ना कि दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, तो वहां तो अच्छे सेंस में कही गई है ये बात। भगवान की सेवा एक ही तरह से नहीं होती है। अब वो नल और कुबर जो थे, नल कुबर और मणिग्रीव, वो वृक्ष तो बने हुए थे, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण अवतार हो और कब भगवान जो है अपने उखल से हमारा उद्धार करें। ये नारद जी ने उन्हें बता दिया था। तो ये जो प्रतीक्षा करनी है, यही उनकी तपस्या बन गई, और इसी तपस्या के फल स्वरूप उनका उद्धार हुआ। और कोई वहां उपाय नहीं है, कोई साधन भजन तो वृक्ष योनि में हो नहीं सकता है। तो स्थाणुम अन्य अनुसंयन्ति, अन्य के लिए लिखते हैं कि अत्यंत अधमा, जो अत्यंत अधम लोग हैं वो मरने के बाद स्थाणु माने एक जगह खड़े रहने वाले, पड़े रहने वाले योनि को प्राप्त होते हैं। अजगर योनि प्राप्त हो गई मान लो किसी को, सर्प की, सर्प की आयु भी बहुत होती है नारायण, और वो अजगर तो बस पड़ा रहता है, भोजन के लिए भी प्रयत्न नहीं करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास बलूका कह गए सबके दाता रहा। लेकिन ये कोई जीवन है नारायण, एक जगह पड़े हुए हैं, कोई चीज आ गई तो मुंह में चली गई, नहीं तो पड़े हुए हैं। तो बोले भूख ही नहीं लगती उन्हें, भूख तो ऐसी लगती है कि साबुत ही निकल जाए। अजगर तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं ना, तो भूख नहीं लगती ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए वो तमोगुण से आए हैं तो तमोगुण में ही पड़े रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। तो बोले भाई किसी को कुछ बना दो, किसी को कुछ बना दो, क्या पक्षपात होता है? बोले कि परमात्मा पक्षपात नहीं करता है, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा जिसका कर्म है और जैसा जिसका ज्ञान है। अब लोग बोल देते हैं ना कि अजी हमें वेदांत सुनने की क्या जरूरत है। अच्छा तो क्या सुनोगे? टीवी देखने में मन लगता है ना रहे, अब के ये चैनल देखो, अब के ये चैनल देखो, अब के ये चैनल देखो। वेदांत में मन नहीं लगता है, नाचने गाने में मन लगता है ना, चाहे दूसरों को नाचता हुआ देखें चाहे खुद नाचें, नाचने गाने में मन लगता है। तो उनका विज्ञान तो गड़बड़ हो गया। अब उनकी अगली योनि जो है वो उसी विज्ञान के अनुसार होगी। अब अगर कोई पुरुष हो और नचकैया हो तो अगले जन्म में क्या बनेगा? हो क्या बोलते हैं जनखे, हिजड़े जो होते हैं, जो कुछ भी बोलते होंगे आप लोग, तो जो न ही है न शी है, बस नाच नाच के अपना पेट भरते हैं नारे। तो देख लो अपना विज्ञान क्या है आपका, ऊंचे से ऊंचा विज्ञान बुद्धि में बैठना चाहिए। तो कम से कम आपकी जो अगली योनि है वो तो सुरक्षित रहेगी, और नीची बात पकड़ोगे तो नीची बात आसानी से पकड़ में आ जाती है, लेकिन उसका अंतिम प्रभाव जो है ठीक नहीं होता है। स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। अब जैसे जिसके कर्म है और जैसा जिसका श्रुत अर्थात ज्ञान है, तो तदनुरूप में वो शरीरम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ, उसके अनुरूप ही उनका शरीर उनको प्राप्त होता है। लेकिन नारायण ये सब बात तब है जब आप शरीर से भिन्न जीवात्मा को स्वीकार करें। शरीर से भिन्न यदि जीवात्मा है तब तो आगे का जीवन उसका है, और केवल मैं शरीर हूं इतना ही मानते हैं तो उनकी गति तो एक ही है कि जन्म और मरो, जन्म और मरो ना। और जन्म मरो याद भी किसको रहती है? अब जन्म हो गया है तो बस मर जाएंगे, बोले पीछे कुछ नहीं रहता जी। तो एक बात सोच लो, बीज आपने बो दिया, कल बताई थी ये बात, बीज आपने बो दिया उसमें से अंकुर निकल आया, बीज तो मर गया ना रहे, लेकिन अंकुर जो है वो दूसरे बीज को तैयार कर देता है, इसलिए अंकुर नहीं मरता है। जब तक वो बीज में से अंकुर निकलना बंद नहीं होगा, चाहे इस बीज में से निकले चाहे अगले बीज में से निकले, तो रिले रेस है, उसने उसको पकड़ा दिया, उसने उसको पकड़ा दिया, उसने उसको पकड़ा दिया। तो ये कर्म पे कर्म जन्म पे जन्म ये होते रहते हैं। शरीर से भिन्न जीवात्मा है ये बात जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये सिर्फ देह के स्तर पर जीना ये कम से कम औपनिषद विद्या तो नहीं है। देखो जितने ये पुराण है ना, ये भी आपके शरीर को तो आत्मा कोई नहीं बताता है। जितने धर्मशास्त्र हैं वो शरीर को आत्मा कोई नहीं बताता है, और हिंदू शास्त्र ही नहीं, मुसलमान शास्त्र हो, ईसाई शास्त्र हो, यहां तक कि बौद्ध शास्त्र भी शरीर को आत्मा नहीं बताता है। शरीर से भिन्न को ही आत्मा बताता है, क्योंकि सब में पुनर्जन्म स्वीकार किया गया है। जैनी भी पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं, सिर्फ ये चार्वाकी लोग और मार्क्सवादी लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं। अब इन्हीं का बोलबाला है आजकल, तो उनकी बात सुननी नहीं चाहिए, और अपने में शक्ति हो तो उसे अपने मन से काट भी देना चाहिए। बृहदारण्यक की भी श्रुति देते हैं, यथा प्रज्ञम ही संभवा तम विद्या कर्मणि समन्वारभते पूर्व प्रज्ञा च। कर्म और पूर्व प्रज्ञा इन दोनों को मिलकर के अगला जन्म होता है, ये उपनिषदों का सिद्धांत। तो अब ये नहीं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, हम भी नहीं मानते ऐसा, पुनर्जन्म नहीं होता। तो ब्रह्मज्ञानी होकर के पुनर्जन्म नहीं होता है। देखो, एक तो आपका शरीर ये है जागृत अवस्था में, और एक आप स्वप्नावस्था में देखते हो अपना शरीर, वो कौन सा शरीर है? वो आपका पुनर्जन्म ही है। हाँ, ये शरीर जैसा यहां दिखता है ऐसा सिमिलर तो होता है वो, लेकिन ये ही नहीं होता है। तो ऐसे ही इसकी वासनाएं जो है वो कैरी ओवर, वासनात्मक शरीर होता है स्वप्न में। तो ऐसे ही जैसे कि स्वप्न का शरीर तैयार हो जाता है, ऐसे ही जागृत अवस्था का शरीर भी तैयार हो जाता है। और पूर्व मीमांसा में तो ऐसा मानते हैं कि समष्टि वासना से ये समष्टि जगत तैयार होता है, और व्यष्टि वासना से ये व्यष्टि शरीर तैयार होता है। है दोनों के मूल में वासना ही। अब हमारा आपका इस समय संयोग हो रहा है, तो या तो हमारे आपके मन की वासना है, या भगवान का कोई संविधान है उस जिसके अनुसार संयोग संबंध होता है। तो वो जो संविधान बनता है भगवान का, वो भी इच्छाओं को लेकर के ही बनता है। हमारी इच्छा है आपको कुछ सुनावे, और आपकी इच्छा है कि कुछ सुने, बस संयोग संबंध हो गया ना। ऐसे ही जहां कहीं भी है, इसी को बोलते हैं कि सब पूर्व निश्चित है। सब पूर्व, ये पूर्व क्या है? पूर्व निश्चित माने इच्छा, इच्छा के अनुसार सब कार्य होता है। कभी आप अकेले में विचार करना और पूरे जीवन का अपना एक ड्राफ्ट देखना कि हमने जीवन में क्या क्या पाया, तो क्या जो मिला वो उसकी इच्छा हमारे मन में हुई थी कि नहीं हुई थी। तो आप पाओगे कि आपकी बिना इच्छा के कोई चीज आपको मिली नहीं है। पहले इच्छा हुई है, जानाति इच्छति करोति, अथवा इच्छति जानाति करोति। इच्छा करने के मूल में इच्छा ही होती है। जो कुछ आपने अब तक किया है, आगे करेंगे, उसके मूल में इच्छा है। भोगने में तो परतंत्र है, लेकिन कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर करने में स्वतंत्र ना हो तो फिर ये भगवान का डंडा ना सहना पड़े। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी करने की, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग किया, इसलिए अब इसका दंड भी सहो। करने में मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन फल भोग करने में वो परतंत्र है।